ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 आनंददेवाय
आनंददेवाय
माधुर्यदेवाय
माधुर्यदेवाय
मुक्तिदेवाय भक्तिदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय
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 माधुर्यदेवाय
माधुर्यदेवाय
शांतिदेवाय
शांतिदेवाय
भक्तिदेवाय
भक्तिदेवाय
मुक्तिदेवाय
मुक्तिदेवाय
ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय
जबहि नाम हृदय धर्यो
जबहि नाम हृदय धर्यो
भयो पाप को नाश
भयो पाप को नाश
जैसे चिनगी आग की
जैसे चिनगी आग की
पड़ी पुराने घास
पड़ी पुराने घास
हरी हरी ओम
तेषामेवानुकम्पार्थ
तेषामेवानुकम्पार्थ
अहं ज्ञानजमं तमः
अहं ज्ञानजमं तमः
नाश्यामि आत्मभावस्थो
नाशयामि आत्मभावस्थो
ज्ञानदीपेन भास्वतः
ज्ञानदीपेन भास्वतः
भगवान कहते हैं कि उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला जो मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दे दीप्यमान ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ। ध्यान देना, तीन प्रकार के चक्षु हैं। एक तो ये आँखें जो है इसको चर्म चक्षु बोलते हैं, इससे ये दुनिया दिखती है। ये चर्म चक्षु राग द्वेष आकर्षण विकर्षण काम क्रोध पैदा करके जीव को बंधनों में फंसाते ही है। तीन प्रकार की सृष्टि और तीन प्रकार के चक्षु, ये स्थूल सृष्टि है और चर्म चक्षु से दिखती है। दूसरी दिव्य सृष्टि होती है, वो दिव्य ज्ञान से दिखती है। जैसे भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए और ऋषि मुनि देवता गंधर्व किन्नर व सब एक भगवान की सत्ता में ही सब दिख रहे। भगवान का योग ऐश्वर्य दिखाया भगवान ने, ये दिव्य चक्षु दिए थे। तीसरे होते हैं ज्ञान चक्षु। तो जो भगवान का भजन करते हैं उनको भगवान ज्ञान चक्षु देते हैं भीतर, अथवा कोई महात्मा प्रसन्न हो जाए और कोई सत्संगी श्रद्धा पूर्वक उनका ज्ञान सुने तो उनको ज्ञान चक्षु की प्राप्ति हो जाती है। तो चरम चक्षु से कितनी बार दुनिया को भोगो देखो, अंत में ठन ठन पाल रह जाता आदमी। दिव्य चक्षु से भगवान का वैभव देखे अर्जुन,
चकित तो हो गए, संशय के समुद्र में गोते खाने लगे। जब भगवान ने कृपा की, अर्जुन को सत्संग के द्वारा ज्ञान चक्षु दिए, अर्जुन के सब दुख दूर हो गए। भगवान वही के वही, लेकिन अर्जुन के आगे भगवान कई रूप में प्रकट होते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन के सामने भगवान प्रकट हुए, पांडवों की सेना, कौरवों की सेना, ऐसी ऐसी है, और भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार देखकर ले आए। रथ में भगवान सारथी बने, पहले अध्याय। दूसरे अध्याय में वही के वही भगवान अर्जुन के आगे गुरु बने। भगवान हकीकत में सारथी भी भगवान हैं, गुरु भी भगवान है। मित्र के गहराई में भी भगवान है, लेकिन ये ज्ञान चक्षु के अभाव के कारण चर्म चक्षु से व्यक्ति को ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये अपना है, ये पराया है दिखता है, और इसी आपाधापी में सारी जिंदगी खत्म करके बेचारा रीता रह जाता है, खोखला रह जाता है। मनुष्य में इतनी शक्ति भरी हुई है, ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है, मनुष्य क्रियते यत्तु तन्न शक्यम सुरासुरहि, ब्रह्म वैवर्त 27-70। जो मनुष्य कर सकता है वो सुर देवता और असुर दैत्य भी नहीं कर सकते। ऐसा ऊंचा अनुभव और ऊंची कमाई मनुष्य कर सकता है, लेकिन चर्म चक्षु में उलझने के कारण, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु का प्रकाश नहीं पाने के कारण जीव बेचारा ठगा रह जाता है। भगवान की भक्ति से जीव के अंतःकरण के कषाय मैल धुलते हैं, और फिर उसकी ज्ञान चक्षु पाने की रुचि हो जाती। जैसे तुम्हारी ये चर्म चक्षु है, ज्ञान चक्षु से विलक्षण है। ज्ञान चक्षु बुद्धि में सूझबूझ का नाम है, ज्ञान चक्षु। भगवान ने विष्णु पुराण में कहा, यन्नाम कीर्तनम भक्त्याः विलापम अनुम उत्तमम मैत्र्या शेष पापाणाम धातुनामिव पावकः। जैसे अग्नि सुवर्ण आदि धातुओं के मल को नष्ट कर देती है, ऐसे ही भक्ति से किया गया भगवान का कीर्तन सब पापों को नाश कर देता है। ये उत्तम साधन है। आठ मास मुख से जपे, 16 मास कंठ जाप, 32 मास हृदय जपे, तन में रहे न पाप। तन में रहे न पाप भक्ति का उपजे पौधा, मन रुक जावे तभी अपर बल कहिए योद्धा। आत्मा का बल, दिव्य शक्तियां आपके मुट्ठी में आ जाती। चरणदास महाराज ने कहा, बहुरी आवे ना भी में ताकू कहे विचार, चरणदास मन जप करे सब बल जाए हार। इस प्रकार का जप करो तो दुनिया का कोई बल आपको जीत नहीं सकता। इस प्रकार का जप करो तो कोई आसुरी बल, दैत्य बल अथवा देव बल आपको परास्त नहीं कर सकता। आठ मास मुख से जपे। जैसे गुरु मंत्र लिया, होठ हिल रहे, जीभ चल रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम हरि ओम आदि। 12,000 जप रोज करें 8 मास, स्थूल शरीर के दोष धुल जाएंगे। 16 मास कंठ में जपे, होठ न ले कंठ में जप चले, और 32 मास हृदय में जप। साढ़े 4 साल का काम है। जप मात्र से भगवत बल की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत भाव की प्राप्ति हो जाएगी। वास्तव में आप जो नहीं हो, उस भाव को आप प्राप्त हुए हो। आप शरीर नहीं है, आप चमड़ा नहीं है, हड्डियां नहीं है, मांस नहीं है, फिर भी चमड़ा हड्डी और मांस वाले शरीर को ही मैं मान रहे। ज्ञान चक्षु बंद है और इसी हड्डी मांस वाले शरीर को खिलाने पिलाने जिलाने और इज्जत आबरू में कई सदियां खप गई, कई जिंदगियां पूरी हो गई। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, आखिर बेचारे खाली चले। 8 मास मुख सौ जपे, 16 मास कंठ जाप, 32 मास हृदय जपे। तन में रहे न पाप, तन में रहे न पाप, भक्ति का उपजे पौधा। मन रुक जावे तभी, मन फिर उस आत्मा में रुक जाता है जिसमें भगवान कृष्ण का मन रुका है, भगवान शिव का मन रुका है, राजा जनक का मन रुका है, दूसरे महापुरुषों का मन रुक जाता और भगवान तुल्य पूजे जाते, उस आत्मा में आपका मन शांत हो जाएगा, रुकेगा। वहां एक बार रुक जाए, फिर आप जो भी व्यवहार करेंगे, व्यवहार किया फिर आकर उसी में बैठ जाएगा मन। इतना वो दिव्य प्रकाश ज्ञान प्रभाव। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ है, अर्जुन को चरम चक्षु का ही ज्ञान है, विराट रूप के दर्शन कराए, दिव्य ज्ञान तो हुआ लेकिन तत्व ज्ञान अभी नहीं हुआ, अपने आत्मा अपने मैं का ज्ञान नहीं हुआ। अपने मैं के ज्ञान के बिना जीव कितना ही धनवान हो जाए, सत्तावान हो जाए, स्वर्गवान हो जाए, फिर भी उसका बेचारे का शाश्वत खजाना नहीं खुलता। शाश्वत खजाना खुलता है उस शाश्वत ज्ञान से। महात्मा की कृपा से दिव्य ज्ञान होता है और परमात्मा की कृपा से भी दिव्य ज्ञान होता है। परमात्मा की निष्काम भक्ति से हृदय में दिव्य ज्ञान आता है तो एक चरम चक्षु होते हैं। भगवान ने कहा, न तु माम शक्यस्ते द्रष्टुम मैनेव स्वचक्षुषा, तो अपनी इस आंखों से चरम चक्षु से मुझे नहीं देख सकता है। 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। दूसरे होते हैं दिव्य चक्षु, जो वर्तमान को भी जानते हैं, भूतकाल को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं, प्राणियों के मन के भावों को भी जानते हैं और देख लेते हैं दिव्य सृष्टि को, विराट सृष्टि को, वो दिव्य चक्षु है। दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चमे योग ऐश्वर्यम, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, मेरा योग ऐश्वर्य देख। पश्य पश्य भगवान ने कहा, देख देख देख। 11वें अध्याय के 8वें श्लोक। तीसरे होते ज्ञान चक्षु, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो योरेव मंत्र ज्ञान चक्षुषा, भूत प्रकृति में मोक्षम च ये विदुर्यान्ति मैं परम। जो ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, विभाग को, कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जान लेता वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, यह हाथ प्रकृति का है, हाथ मैं हूं नहीं, हाथ ही प्रकृति का, पंचभूतों का है, सिर भी प्रकृति का है, पैर भी प्रकृति के, सारा शरीर प्रकृति का है, पांच भूतों का है। ये क्षेत्र है, जैसे खेत में जैसे बीज बोते हैं ऐसे फल मिलते हैं, ऐसे इस शरीर से जैसे कर्म करता है जीव ऐसे ही उसको फल मिलते हैं। शुभ का फल सुख भोग कर जीव वहीं पहुंच जाता है जहां से शुभ किया था, अशुभ का फल दुख भोग कर जीव वहीं पहुंच जाता है, फिर करता है, फिर पहुंचता है, फिर ऐसे जीव कई जन्मों से भटकता रहता है। जब ज्ञान चक्षु मिले कि ये क्षेत्र है, ये शरीर कर्म करने का एक साधन है, शरीर मैं नहीं हूं, मन संकल्प विकल्प करने वाला साधन है। कुछ लोग फरियाद करते, मन लगता नहीं, मेरे मन में बुरे विचार आते, मेरा ऐसा है, मैं बहुत खराब हूं। अपनी कमी दिखना, अपने दोष दिखना ठीक तो है, लेकिन उस दोषों का चिंतन ठीक नहीं। दोष दिख गए, वो दोष शरीर में है, मन में है, मुझ में मेरा परमात्मा है, परमात्मा में मैं हूं। परमात्मा चिंतन में आ जाओ तो दोषों का प्रभाव से आपका मन मुक्त हो जाएगा, पापों के प्रभाव से मन मुक्त हो जाएगा, दुखों के प्रभाव से मन मुक्त हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि मैं ये सब ठीक हो जाऊं फिर भजन करूंगा, ऐसा हो जाए फिर भजन करूंगा, मेरे इतने पाप मिट जाए फिर भजन करूंगा, इतने शत्रु मिट जाए फिर भजन करूंगा, इतने पैसे हो जाए फिर भजन करूंगा, फलानी जगह जाकर भजन करूंगा। बिल्कुल मन का धोखा है। आप जहां हो, जब भी हो, जैसे हो, चाहे पापी हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे कैसे भी हो, भगवान कहते अपिचे दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पापकृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन वृजिनम समतरिषसि। पापी से पापी हो, दुराचारी से भी आखिरी कोटि का हो, लेकिन इस ज्ञान चक्षु के शरण जाओ, इस ज्ञान की नाव में बैठ, पानी 10 फीट गहरा हो चाहे 100 फीट गहरा हो, नाव वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू, अनेक जन्म की बिगड़ी बाजी अब और आज सुधर सकती। तुलसी होई राम को राम भजी, तजी को समाजू। तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे, ऐसा करके उनका प्रीतिपूर्वक स्मरण करो। अपने श्रेष्ठत्व का स्मरण करोगे तो अहंकार आएगा, अपने नीचता का स्मरण करोगे तो विषाद आएगा, दूसरों की श्रेष्ठता और नीचता का स्मरण करोगे तो राग और द्वेष होगा। आप तो भगवान का स्मरण करो, वो भगवान तुम्हारी आंखों के द्वारा देखने की सत्ता बांट रहे, कान के द्वारा सुनने की, मन के द्वारा सोचने की, बुद्धि के द्वारा निर्णय करने की, और ये उन्हीं की सत्ता है। तुम उन्हीं में शांत हो जाओ और फिर जब कुछ करना है तो उन्हीं की सत्ता का एहसास करो, फिर उन्हीं में शांत हो, तुम्हारे कार्य अच्छे होने लगेंगे, तुम्हारे भाव अच्छे होने लगेंगे, तुम्हारा चित्त अच्छा होने लगेगा, तुम्हारे को चैतन्य में, परमात्मा में, हृदय मंदिर में जाने का प्रसाद प्राप्त होगा। बाहर के मस्जिदों, मंदिरों, चर्चों में कितना भी कोई भटके, देर सवेर हृदय मंदिर में ले आने वाला सत्संग ही उसके भाग्य का एक सुंदर संकेत है। जब तक सत्संग में रुचि नहीं हुई तो समझो अभी मंदिरों में जाना फला नहीं, पूजा गृहों में जाना, चर्चों में जाना फला नहीं। ब्रह्मज्ञानी गुरु के सत्संग में आ गए, हृदय मंदिर की बात सुनी, समझो मंदिरों में जाना सफल हो गया, मनुष्य जन्म लेना सफल हो गया, पुण्य करना सफल हो गया, दान करना सफल हो गया, स्नान करना सफल हो गया। हृदय मंदिर में वो ज्ञान चक्षु कठिन नहीं है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, शरीर क्षेत्र है, इसमें जैसे जैसे कर्म के बीज बोते हैं ऐसे ऐसे फल लगते हैं। लेकिन उन फलों के भोग को तुम जानते हो, कर्मों को जानते हो, सुखों को जानते हो, दुखों को भी जानते हो, चिंताओं को भी जानते हो। लेकिन चिंता से मिल जाते हो तुम चिंता की खाई में गिर जाते हो, दुखों को जानते हो लेकिन दुखों से मिल जाते हो, ज्ञान चक्षु का आश्रय नहीं लेते हो, दुखों में आप दब जाते हो, सुखों में अहंकार में आ जाते हो, माया के थपेड़े लगते हैं आपको, सारी जिंदगी मेहनत कर करके थक जाते, फिर भी पूर्ण जीवन पूर्ण शांति पूर्ण संतोष का पूर्ण सुख का पता नहीं चलता। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वागुणान्मितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। भगवान कहते हैं शरीर को छोड़कर जाते हुए ये दूसरे शरीर में स्थित होता है, अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप में को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान चक्षु वाला ज्ञानी पुरुष जानता है। अर्जुन तो ज्ञानी पुरुष जैसा बन जा, और अर्जुन ने युद्ध के मैदान में वो ज्ञान पा लिया। गीता के 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में आया, दृश्य मात्र निरंतर अदर्शन में जा रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे ज्ञान चक्षु से। बचपन बीत गया, बचपन के खिलौने और तोतली भाषा चली गई, बचपन की बुशर्ट और नन्ही सी चड्डी अब आपके पहचानने में भी नहीं आती। कोई बता दे के ले ये तो पहनता था, नानी ने दादी ने मौसी ने छुपा के रखी, तो लगेगा कि इतनी चड्डी है मैं तो इतना। तो बचपन बदल गया, बचपन के वस्त्र बदल गए, बुद्धि बदल गई, ये क्षेत्र बदल गया, लेकिन बचपन को जानने वाला जो मैं है तुम्हारा आत्मा नहीं बदला। किशोर अवस्था आई बदली, जुवानी आई बदली, भर्ती के दिन आए वो बदल गए। भर्ती चल रही, फार्म भरा है, मैं सिलेक्ट हो जाऊं, सलाम मारना सीखा, सलाम मारने में सफल भी हो गए, लेकिन वो दिन स्वप्ना हो गया। लेकिन उसको जो जानता है वो अपना हो जाए, इसी का नाम मनुष्य जीवन है। वो दिन याद करो, मंगनी नहीं हुई थी, मूछें आ रही थी, आईने में देखते थे, मंगनी की बात सुनी, शादी होगी, शादी की सजावट हुई, बैंड बाजे बने, दूल्हा ठाठ मार से चल रहा है, सोचा कि अब सुख के दरिया में जाकर आराम से रहेंगे, बड़े सुखी हो जाएंगे, सब पैदल चल रहे हैं, गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और आप बड़े ठाठ मार से रथ में घोड़े पे कार में बैठे हैं, दुल्हा दुल्हन के द्वार गया तुम्हारा, बरात और दुल्हन भी, मेहंदी रची हाथों में, गहने गाथे पहरे, लाली लगाई, दुल्हन समझती थी कि बस अब तुम खुशी के दिन आएंगे, मानो सुख का अमृतमय घड़ा आ रहा है पति, वो समझता कि अमृतमयी पत्नी से मिलेंगे। माया याद रखो वो दिन जब यूं कर वेदी के समय फेरे फिर रही थी। भाई तुम भी याद करो वो दिन चले गए, जो कल्पनाएं थी सारे अरमान रह गए। अब तो जिम्मेदारियां परेशानियां, बेटी बड़ी हो गई, बेटा कहना नहीं मानता, पगार में पूर्ति नहीं होती और बदली का ऑर्डर आया। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। इस क्षेत्र रूपी शरीर के साथ मिलकर न जाने कितनों की खुशामत की, कितने कितने प्रयत्न किए सुखी होने के लिए, कितने कितने कावे दावे किए, कितनी हेरा फेरी की, लेकिन अंत में देखो तो सब व्यर्थ हो जाता है। भगवान बोलते हैं ज्ञान चक्षु जब तक नहीं मिला तब तक जीव प्रकृति और गुणों में बंधा है। निर्बंध एक नारायण और नारायण को जानने वाले महापुरुषों का संग। नानक जी ने कहा साध जना मिल हर जस गायो, निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। उस निर्भय आत्मा परमात्मा को जपो जानो सारे भयों से बच जाओ, संत की कृपा से ये प्राणी बंधनों से मुक्त होता है। मनुष्य जन्म पाकर अगर निर्बंध नहीं हुए, मनुष्य जन्म पाकर निरअहंकार नहीं हुए, मनुष्य जन्म पाकर निश्चिंत नहीं हुए, मनुष्य जन्म पाकर निर्द्वंद नहीं हुए, निर्दोष नहीं हुए, तो फिर 84 लाख योनियों में माताओं के गर्भों में भटकना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म सारे दुखों से छूटने का ज्ञान पाने के लिए, रसमय भगवान की भक्ति पाने के लिए, योगमय भगवान के कर्म योग करने के लिए। कूड़ कपट करने वाला समझता मैंने धोखा करके माल पा लिया, कमा लिया, हूं बहु डॉट डायो छू, लेकिन अंतरात्मा उस पर नाराज होता और उसको भटकाता है। तुलसीदास कहते हैं चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारो वरण चमार। ये चमड़े वाले शरीर को कितना भी खिलाओ पिलाओ घुमाओ भुगताओ आखिर क्या पड़ा रहेगा, माल खजाना छोड़ त्रिया सुत जाना है। जो बैंड बाजे बजाते गए त्रिया को लाए पत्नी को लाए, उसको छोड़कर जाए, पुत्रों को छोड़कर जाएगा, धन दौलत और हेरा फेरी के तुम्हारे रुपए डॉलर साथ नहीं चलेंगे, अकेला जाना पड़ेगा। बड़ा बीहड़ मार्ग है, अपने ज्ञान चक्षु के बिना तुम्हारा यहां का धन और यहां के मित्र और यहां के साहब और सत्ता कोई काम में नहीं आएगी। कबीरा ये जग आए के बहुत से कीने मीत, इस दुनिया में आकर बहुत मीत किए तुमने, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत, उसे एक ज्ञान स्वरूप ईश्वर से दिल बांधा वे निश्चिंत रहे, बाकी सारी चिंता की आग में जुलसते रहते। चिंता से चतुराई घटे,
चिंता से चतुराई घटे,
घटे रूप और ज्ञान,
घटे रूप और ज्ञान,
चिंता बड़ी अभागिनी,
चिंता बड़ी अभागिनी,
चिंता चिता समान,
चिंता चिता समान,
तुलसी भरोसे राम के,
तुलसी भरोसे राम के,
निश्चिंत होई सोए,
निश्चिंत होई सोए,
अनहोनी होनी नहीं,
अनहोनी होनी नहीं,
होनी होए सो होए,
होनी होए सो होए।
अनहोनी तो होनी नहीं है, जो होनी होगी हो जाएगी। अपने चतुराई से सत्ता वाले सोचते थे कि कर लेंगे फिर से कुर्सी बनी रहेगी, लेकिन उनकी चतुराई क्या काम आई, जो होनी है होके रह गई, किसी की अटल पदवी नहीं रही। तो अटल जी का भी ये हुआ, होनी होय सो होय, तू प्रयत्न कर लेकिन चिंता चिता को अपने जीवन में मत ला, और परिस्थिति कैसी भी आए गुजर जाएगी। मेरो चिंत्यो होत नाही हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे मैं रहूं निश्चिंत। सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित ने कहा कि भगवान निर्गुण है, आत्मा निराकार है, सम है। फिर भगवान देवताओं का मंगल करने के लिए दैत्यों का विनाश करते हैं, अवतार लेते हैं। एक साधारण पुरुष जैसे अपने प्रशंसक का सहयोग करे, इसी प्रकार का छोटा काम भगवान क्यों करते हैं? भक्तों के पक्ष लेते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं। हालांकि भगवान निराकार है, सम है, शांत है, निर्विकार है, फिर भी मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आता कि भगवान ऐसा क्यों करते। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने सुंदर प्रश्न किया है। शिशुपाल और दंतवक्र पानी पी पी कर भगवान को गालियां देते थे, जैसे मुजरिम की थाने में पिटाई होती ना, पानी पिला पिला के दे 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 के दे। जो पुराना मुजरिम होता है चोरी नहीं बताता है अपना गुना, पैरों ते तले डंडे दे और दे दे। बैटरी अथवा डायनामो थोड़ा घुमाकर उसका करंट भी दे देते, उसको लगता है कि बिजली का करंट आया। ये सब करते हैं उसे उगलवाने के लिए। लेकिन यहां शिशुपाल और दंतवक्र भगवान को गालियां देते थे। और फिर भगवान का सुदर्शन छूटा और शिशुपाल का तेज भगवान के आत्मा में मिल गया। उनमें नवदा भक्ति नहीं थी, भगवान के चरण सेवा नहीं थी, सख्य भाव भी नहीं था, दास भाव भी नहीं था, सत्संग सुनना भी नहीं था, कीर्तन भी नहीं था। फिर भी शिशुपाल नंतवक्र का आत्मा भगवान में कैसे विलय हुआ? और भगवान देवताओं का हित करते हैं और दुष्टों का दमन करते। परीक्षित ये तुम्हारे दादाजी ने युधिष्ठर ने प्रश्न किया था नारद जी से, वैसा ही प्रश्न तुमने किया है। भगवान अजन्मा है, निराकार है, लेकिन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन तीन गुण की माया से वो सृष्टि का खेल करते। जब सत्वगुण होता है तो ऋषि और देवताओं का अभिष्ट करते, रजोगुण को विस्तार करना चाहते हैं तो राक्षसों का गंधर्वों का विकास करते हैं, और जब भगवान विश्राम करना चाहते तो तमोगुण का विश्राम विकास करते हैं। जैसे व्यक्ति एक शरीर में खुद ही है, आप ही है, लेकिन जब नहाना चाहता है तो कपड़े उतार कर गोता मारता है, फिर कभी कपड़ा पहनना चाहता है, बदलना चाहता है तो भिन्न भिन्न चेष्टा करता है, कभी शयन करता है, कभी प्रवृत्ति करता है, कभी चिंतन करता है। ऐसे ही एक ही सच्चिदानंद कभी तमोगुण से लीला करता है, कभी रजोगुण से, कभी सत्वगुण से, ये उनके गुणों की लीला है। भगवान का सुदर्शन का पवित्र स्पर्श पाकर शिशुपाल और दंतवक्र भगवान का विरोध करने वाले भी थे, लेकिन भगवान का ही चिंतन था। शत्रु रूप में द्वेष भाव से, मित्र भाव से, सखा भाव से, दास्य भाव से, वात्सल्य भाव से, जार भाव से, किसी भी भाव से भगवान का चिंतन करने वालों का भगवान में प्रवेश हो जाता है। कंस भगवान का भय से चिंतन करता था। जब भोजन करता चपर 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 अपने मुंह की आवाज से महसूस करता कि कहीं मेरा मारने वाला कृष्ण तो नहीं आ गया। रावण भगवान का द्वेष भाव से चिंतन करता था। गोपियां कोई निर्दोष भाव से चिंतन करती थी, कोई प्रेम भाव से, भक्ति भाव से चिंतन करती थी, कोई जार भाव से चिंतन करती थी, लवर भाव से चिंतन करती, योगी आत्म भाव से चिंतन करते थे। आपके चिंतन की धारा भगवतमय हो जाए, बच्चा प्यारा लगे, उनकी नन्ही नन्ही आंखें, मधुर मुस्कान, उसको स्नेह करते करते आप भगवान की लीला को स्मरण करो कि कैसे बच्चे की आंखों के द्वारा निहारता है, कैसे नन्हे नन्हे होठ मुस्कुराहट दिलाता है, थकान मिटाता है, कैसा कन्हैया है तो कैसा गोविंद है। बच्चे में ममता नहीं होगी, भक्ति भगवान की हो जाएगी। विरोधी या शत्रु आपकी निंदा करते हो तो आप सोचो कि भगवान मेरा अहंकार और दोष मिटाने के लिए, संसार की आसक्ति मिटाने के लिए विरोधी के द्वारा ऐसा करवा रहे। एक पार्टी हार गई और दूसरी जीत गई, जीतने वाली अहंकार न करे और हारने वाली विषाद न करे। जीतने वाली समझे भगवान ने सेवा का मौका दिया है, पक्षपात रहित सेवा करके अपना आसक्ति मिटाकर भगवान को पाना है, और हारने वाली सोचे कि हमारी आसक्ति बढ़ न जाए इसलिए भगवान ने हमको हार दी। भगवान ये हार जीत सफलता विफलता देकर देर सबेर हमें अपने से मिलाना चाहते, अपना दिव्य चक्षु जगाना चाहते। मेरो चिंत्य होत नहीं हरि को चिंत्य होए। मैं तो कहता हूं आप हरि के चिंत्यों में सहमत हो जाओ। शराबी जो चाहे आप ऐसा करने लगो तो आप शराबी बन जाओगे। जुआरी जो चाहता है आप ऐसा करने लगो तो आप जुआरी बन जाओगे। भंगेड़ी दूसरे को भंगेड़ी बनाता है, ऐसे भगवान की हां में आप हां अपनी बना लो तो भगवान आपको आत्मा परमात्मा में जगा दे। जो थारी राह वो मारी राह, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। एक महात्मा समुद्र में सैर कर रहे थे, सफर कर रहे, नाव में कहीं छेद से पानी आ रहा था तो महात्मा करमंडल भर भर के नाव में डालने लगे। नाविक ने पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले, वो नाव डुबाना चाहता है तो उसकी मर्जी में अपनी मर्जी, ये शरीर लेकर कोई नया शरीर देना चाहेगा, इसलिए करमंडल भर भर के मैं भी डालता हूं, चलो तेरा काम पूरा हो। नाविक जानता था महात्मा समर्थ है। नाविक ने उस छिद्र में अपना जो कुछ उसके पास था, कपड़ा ढूंढा पूंटा और डांगार, पानी आना बंद हो गया तो महात्मा फिर करमंडलू भरते भरते उलेचने लगे। बोले, बाबा पानी बाहर क्यों फेंकते? बोले, उसकी मर्जी है बचाने की, तभी तेरे को प्रेरणा दी कि ऐसा करके ये कपड़ा ऐसे ऐसे डाल दे और पानी आना बंद कर दे। जब उसकी मर्जी बचाने की तभी तो प्रेरणा मिली ना, उसकी मर्जी बचाने की तो मैं बचने को तैयार, उसकी मर्जी मर जाने को है तो मैं मर जाने को तैयार हूं, मैं काहे को अड़ेल बनूं। आदमी दुखी तब होता है जब भगवान की इच्छा के आगे अपना अहंकार रखता है, अपनी ख्वाहिश रखता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तभी दुखी होता है। पत्नी सुंदर हो, आज्ञाकारी हो और कोई उसके सामने बद नजर से ना देखे। अब सुंदर है, आज्ञाकारी और कोई बद नजर से नहीं देखे, ये कैसे होगा? दुखी होगा वो आदमी। स्त्रियां चाहती कि मेरा पति तो बस हिम्मत वाला हो, मर्द हो और फिर मेरे कहने में चले, हिम्मत वाला भी हो मर्द भी और तेरे कहने में कैसे चलेगा। अगर चल पड़ा तो बोलेगी ये तो कोई आदमी है तो बंधु है। तो ये विपरीत इच्छाओं विपरीत धारणा ज्ञान चक्षु के अभाव में आदमी दुख बना लेता है। मेरा मकान भी बना रहे, मेरी इज्जत भी बनी रहे, मेरा यौवन भी बना रहे। अब जो बना है वो तो बिगड़ेगा, जो पैदा हुआ वो तो नष्ट होगा। यौवन सदा कैसे रहेगा, इज्जत की वाहवाही सदा कैसे रहेगी। जितने दिन रही वाहवा तो वाहवाही के योग्य सत्कर्म तो कर, फिर वाहवाही हो जाए तो तेरी लीला है और निंदा हो जाए तो तेरी लीला है। निंदा कराकर तू आसक्ति मिटाता है, वाहवाही कराकर तू विषाद मिटाता है। तू अपना ज्ञान चक्षु देना चाहता है, तेरी मर्जी पूर्ण हो। तू सुख दुख में हमें सम रखना चाहता है, तेरी मर्जी पूर्ण हो। जन्म और मृत्यु और बुढ़ापा और बीमारी ये सारा खेल दिखाकर, ये क्षेत्र का खेल है, ये क्षेत्र में होता है, तेरे तीन गुणों की माया में होता है। ये बदलता है फिर भी उसको जानने वाला आत्मा अबदल है और परमात्मा अबदल है। ये ज्ञान कराने के लिए तूने सृष्टि रची है, तेरी मर्जी पूर्ण हो। कहीं मां मां करके वात्सल्य को जगाने वाले बच्चे मिलते हैं, तो कहीं पत्नी की निगाह से देखने वाला पति मिलता है, तो कहीं दुष्ट निगाह से देखने वाला कोई कामी मिलता है। ये सारी तारी सृष्टि के तेरी सृष्टि के खेल है। तू वही का वही है, तू मेरा है, मैं तेरी हूं प्रभु। बस प्रभु का चिंतन करो, ज्ञान चक्षु जागृत करो, काम बन जाएगा आपका, तो मंगल हो जाएगा। आपकी मीठी मुस्कान, आपके दो वचन सुनने वाले का भी मंगल होने लगेगा। ये दिव्य चक्षु की बड़ी भारी महिमा। भगवान श्री कृष्ण शाकुनी को भी दिख रहे थे, दुर्योधन को भी, अर्जुन को भी। भगवान का दर्शन होना तो बड़े भाग्य से है, लेकिन दर्शन के बाद भी भगवान की ज्ञान चक्षु नहीं मिली तो शाकुनी का कपट नहीं गया, दुर्योधन का द्वेष नहीं गया, अर्जुन की परेशानी नहीं गई। जब भगवान ने ज्ञान चक्षु दिया और अर्जुन ने ग्रहण किया तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, मेरा मोह अज्ञान नष्ट हो गया, मेरे को स्मृति आ गई कि ये सब शरीर खिलौने मात्र है। जैसे सागर में बुलबुले पैदा हो के लीन हो जाते, पानी का क्या बिगड़ता है, ऐसे आत्मा का क्या बिगड़ता है। झोंपड़े में रहे तो क्या है, महल में रहे तो क्या है, 36 भोजन किए तो क्या है और रूखा सूखा खाया तो क्या है। अंत में ये सपने जैसा संसार है, बदल जाएगा। तो चर्म चक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। चर्म चक्षु तो कुत्ते बिल्ले घोड़े गधों को भी है, दिव्य चक्षु मनुष्य को कभी गुरु की कृपा से भगवान की कृपा से ध्यान में कुछ दिख जाता है। लेकिन ज्ञान चक्षु तो जिस पर भगवान की अत्यंत कृपा होती, गुरु के सत्संग की जिस पर अत्यंत कृपा होती, उसको ज्ञान चक्षु जागृत होते। वो जानता कि सुख आया है, इसके पीछे जाने का मजा लो, ये जाने वाला है, इसलिए आसक्ति मत करो। दुख भी आया है तो इससे दबने की जरूरत नहीं, जाने का मजा लो। सुख भी जाएगा दुख भी जाएगा, उसको देखने वाला मेरा दिल भर दीदार मेरे साथ रहेगा। प्रभु तेरी जय हो। बचपन भी आएगा, जवानी भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा और मृत्यु भी आएगी। जो आएंगे वे जाएंगे, लेकिन मेरा ज्ञान स्वरूप परमात्मा, मैं नरक में रहूं तब भी मेरा साथी है, स्वर्ग में रहूं तब भी है, और मुक्त हो जाऊं तभी भी मुक्त आत्मा में जग जाऊं ज्ञान चक्षु से।